कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
युधिष्ठिर महाराज सबके समझाने से हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार हो गए और चले आ रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, जिस समय युधिष्ठिर महाराज एक बहुत सुंदर रथ के ऊपर बैठकर राजमार्ग से हस्तिनापुर आ रहे थे, उस समय में सारा जन समुदाय समुद्र के समान उमड़ पड़ा, जैसे समुद्र चंद्रमा को देखकर हिलोरे खाता है, ऐसे चौराहे वगैरह सब जगह खूब मनुष्यों की भीड़ जम गई। आसपास के सड़क वगैरह में रत्न विभूषित विशाल भवन थे, उन भवनों में रहने वाली स्त्रियां झरोखों से युधिष्ठिर महाराज के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी और वे स्त्रियां युधिष्ठिर जी की प्रशंसा करती हैं। जो युधिष्ठिर जी भीमसेन अर्जुन और माद्री पुत्र नकुल सहदेव के साथ एक ही रथ पर बैठे हुए हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे हैं, वे स्त्रियां कहने लगी, हे पांचाली, हे द्रौपदी, तुम बड़ी धन्य हो, तुमको कैसे सुंदर नरश्रेष्ठ पति मिले हैं जो स्वयं धर्म का आचरण करते हैं और आपको भी धर्म में लगाए रखे हैं। तुम्हारे पुण्य अमोघ हैं, तुमने हमारी सारी स्त्री जाति का नाम उज्जवल कर दिया है। इस प्रकार से वे स्त्रियां प्रशंसा कर रही हैं और युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के मुख्य दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गए। जिस समय पहले दरवाजे में प्रवेश किए, उस समय वहां मंत्री हैं, सेनापति हैं और बड़े बड़े पुरुष हैं, वे सब आपस में मिलकर के कहने लगे, हे राजेंद्र, बड़ा अच्छा हुआ, एक अधर्म शासन का रथ से नीचे उतरने के बाद महल के अंदर गए और वहां जितने कुल देवियां और कुल देवता थे सबका पूजन किया। पूजन करने के बाद वे वापस महल से बाहर आए और चारों तरफ से उनको ब्राह्मणों ने घेर लिया। ब्राह्मण लोग खूब आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे, हे कौंते, हम बराबर यही इच्छा रखते थे कि महाराज युधिष्ठिर की इस युद्ध के अंदर विजय होगी, वो सत्य की विजय होगी, वो धर्म की विजय होगी। आज उस विजयी राजा को देखकर हम लोगों का हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। धौम्य गुरु को आगे करके उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का तिलक किया, शंख बजाए और सब लोग बड़े आनंदित हुए। इतने में ही एक चार्वाक नाम का ब्राह्मण का रूप बनाया हुआ राक्षस था, वो राक्षस लेकिन ब्राह्मण का रूप बनाया, बड़ी चोटी रखी और जनेऊ पहनी, तिलक लगाए, छापा लगाए, भुजाओं में यहां भी छापा लगाए, छाती में सब जगह छापा लगाए, माला पहनी हुई, साक्ष है, शिखी, त्रिदंडी, ऐसा वो त्रिदंड धारण किया हुआ वो चाहे कितना ही साधु ब्राह्मण का वेश बनाए, परंतु उसके हाव भाव बोली चाली से उसका फूडपना और राक्षसपना स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। ब्राह्मणों ने भी देखा कि ये कौन आ गया, ये हमारे परिचितों में से तो नहीं है। असल में जन्मेजय जी ये राक्षस दुर्योधन का मित्र था और ये चार्वाक नाम से कहलाता था। दुर्योधन के यहां आता था और दुर्योधन के यहां आकर वो पांडवों का अनिष्ट करने का कुछ न कुछ उपाय करता रहता था। जो भी हो, उस समय वो तपस्वी ब्राह्मणों के बीच में घिरा हुआ था और उस समय वो सब ब्राह्मणों के बीच में चिल्लाने लगा, ए महाराज युधिष्ठिर, मैं समस्त ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बनकर इनकी ओर से तुम्हें विशेष बात कहना चाहता हूं। तुम धर्मात्मा कहलाते हो, धर्म पुत्र कहलाते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा खराब स्वभाव का राजा इस हस्तिनापुर में अब आया है, क्योंकि तुमने अपने जाति का नाश किया है। अरे कौनते, जाति का नाश करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। जाति का भी नाश किया तुमने, अपने गुरु को नाश किया तुमने, अपने पितामह का नाश किया, सबको तुमने नष्ट कर दिया, सबको मार दिया। तुम यहां राज्य करने आए हो, मृतम श्रेय है, तुम मर जाते तो बड़ा अच्छा था। शर्म नहीं आई तुमको इतने लाशों को देखकर? तुम्हारे अंदर क्या गुरु द्रोणाचार्य के प्रति भक्ति पैदा नहीं हुई? पितामह भीष्म पर बाणों की वर्षा हो रही थी, आप अर्जुन को जाकर मना नहीं कर सकते थे? दुर्योधन आदि एक एक धृतराष्ट्र के पुत्र को गिन गिन करके, चुन चुन करके भीम मार रहा था, तुमने भीम की गदा नहीं पकड़ी? और भरे रणांगण में तुम खड़े होकर कह देते कि मैं युधिष्ठिर जंगल में जा रहा हूं, मुझे युद्ध नहीं करना है। तुमसे कहा नहीं गया? और धर्मात्मा बनने आए हो, शर्म आनी चाहिए। आप राजा बनकर के, राजा की इच्छा रख करके, राजा होने की इच्छा के यहां आए हो। मैं अकेला नहीं कहता हूं, सब राक्षसों की ओर से बोलता हूं, सब ब्राह्मणों की ओर से बोलता हूं। तस्य दुष्टस्य राक्षस है, सब ब्राह्मण यूं देखें, ये हमारी तरफ से बोलता है, हमारी ठेकेदारी लेता है। विव्यथु सब व्यथित हो गए, चुक्रुषु सब आक्रुष्ट हो गए, एक बार तो सब चुप हो गए एकदम। अब इससे कौन माथा लगाए, पहले कौन बोले? ब्राह्मण सब, अब युधिष्ठिर महाराज ने सब ब्राह्मणों को देखा, यूं तो ब्राह्मणों ने आंखें नीचे कर ली, सब चुप हो गए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप मेरे पर कृपा करो, इस युद्ध के पीछे मैं अकेला नहीं था, ये युद्ध मैंने क्यों किया है आप सब बैठ करके मुझसे सुने, मैं आपको बता सकता हूं। प्रत्यासन्न व्यसनिनम च नमाम धिक्कर तुम मर रथ है, मैं स्वयं इस समय घोर विपत्ति में फंसा हुआ हूं। मेरे हृदय से पूछो कि इस समय मेरे में क्या बीत रही है। आप लोग मुझे धिक्कार मत कीजिए, क्योंकि मुझे किसी से भी भय नहीं है। एक ब्राह्मण का जो धिक्कार लगता है उससे भय होता है। तो युधिष्ठिर जी ने रोते हुए ये वचन कहे तो सारे ब्राह्मण व्यथित हो गए और एक साथ कहने लगे, हे महाराज, आपका कल्याण होगा। ये जो बोलने वाला है ये हमारी तरफ से नहीं बोलता है, केवल हमारा नाम लेता है, ये हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम इसको जानते तक नहीं है। हम ब्राह्मणों के बीच में आ कैसे गया? कई कई तपस्वी ब्राह्मण थे, उन्होंने उसको घूर के देखा, ये कौन है वो? तो तपोबल के द्वारा उसको पहचान लिया, पहचान के कहा, महाराज सुनिए सुनिए, हमने इसको पहचान लिया है, इतने दिन तक पहचाने नहीं, ये दुर्योधन का मित्र है। एष दुर्योधन सखा चारवाको नाम राक्षस है, ये चारवाक नाम का राक्षस है और ये परिव्राजक रूप में सन्यासी के रूप में ब्राह्मण के रूप में यहां आया है और ये केवल दुर्योधन का हित करने के लिए आ रहा है। इसके मन में दुर्योधन के मरने की पीड़ा है, इसलिए वो चाहता है कि दुर्योधन नहीं रहा तो प्रजा को भी पता चले कि दुर्योधन के बिना आप कैसे सुखी रह सकते हो, इसलिए ये आया है, आपको शासन से हटाने के लिए आया है। हमने इससे कभी बातचीत भी नहीं की, आपको कोई भय नहीं मानना चाहिए, ब्राह्मण है ही नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज के फिर भी आंखों से टप टप आंसू पड़े तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि देखो हम लोगों के रहते हुए ये अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, एक धर्मात्मा पुरुष एक राक्षस बने हुए ब्राह्मण से व्यथित हो गए। तो ब्राह्मण लोग कुपित होकर ऐसे हुंकार किया, हुंकार करते वो वहीं पर मारा गया। ब्रह्मवादियों के तेज से दग्ध होकर वो वहीं पर गिर गया और फिर जो है युधिष्ठिर महाराज को जो है आगे बढ़ते हुए कहा महाराज अब आगे पढ़िए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा युधिष्ठिर ब्राह्मणास्तात लोकेस्मिन अर्चनीया सदा मम, ब्राह्मणों का तो सदा मैं भी आदर करता हूं, ये ब्राह्मण लोग होते हैं इनके वाणी में तो जहर होता है और वाणी में ही अमृत रहता है, इसलिए सदा ब्राह्मणों की सेवा करते रहना। ये चारवा कौन है इसके विषय में इन लोगों को किसी को पता नहीं, मुझे पता है। पहले सतयुग के अंदर भी इसका नाम चारवाक था और ये एक राक्षस था। इसने बद्री नारायण में जाकर बहुत वर्षों तक तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी से इसने वरदान ले लिया कि महाराज मैं समस्त प्राणियों से अभय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि कोई प्राणी तुझे नहीं मार सकता, तू ब्राह्मण के अपमान से ही, ब्राह्मण ही तुझे मार सकते हैं, ब्राह्मण का अपमान करोगे तो मारे जाओगे, इसके अलावा नहीं। द्विजाव मानाद अन्यत्र प्रादाद वरम अनुत्तमम, तो उसको ये वरदान मिल गया, इससे ये उद्दंड हो गया। अब देखा कि न देवताओं से मर सकता हूं, न किसी से ही नहीं मर सकता हूं, हिरण्यकश्यप की तरह से ब्राह्मण आएंगे, मुझे ब्राह्मणों से लेना देना क्या है, ब्राह्मण मिले अपमान करूं तब न मरूंगा, ब्राह्मणों के पास जाऊंगा ही नहीं। अब वो सब देवताओं को दैत्यों को सबको तंग परेशान करने लग गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये क्या आप चलते फिरते वरदान दे देते हो, कहा कि देखो भाई मरना तो पड़ेगा, कोई अमर तो होगा नहीं, कि क्या कितने लोगों को कष्ट देगा ये, मैं क्या करूं, तपस्या कर लेता है तो तपस्या करते हैं तो आपको ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए, कि आप नहीं देना चाहिए तो क्या करूं, मैं भी नहीं देना चाहता, मांग लेते तो फिर तपस्या का कोई तपस्या का आचरण करेगा ही नहीं। खूब विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये अब धीरे धीरे कुसंग में पड़ेगा और द्वापर युग में दुर्योधन का संग करेगा और दुर्योधन का संग करने पर फिर उस युग में पांडव लोग कृष्ण की मित्रता से बड़ा उत्कर्ष प्राप्त करेंगे और फिर ब्राह्मणों के बीच में इसका वध होगा। तो वो दिन अब आज इसका आ गया और ये यहां पर मारा गया। अब आप आगे का काम कीजिए, देखो आप अपने राज्य के अंदर सब सीमाओं की सुरक्षा कीजिए और ब्राह्मणों का आदर करेंगे तो ब्राह्मण के अंदर यज्ञ करने की शक्ति है तो यज्ञ की रक्षा हो जाएगी, यज्ञ की रक्षा हो जाएगी तो गौओं की रक्षा हो जाएगी, शास्त्रों की रक्षा हो जाएगी, शुभ कर्मों की रक्षा हो जाएगी, ऐसे भगवान ने उपदेश दिया। फिर वहां एक सोने का सिंहासन रखा और उसके पास में भगवान श्री कृष्ण के लिए एक सिंहासन और रखा गया, बीच में माने युधिष्ठिर महाराज के अगल बगल में भीमसेन और अर्जुन के अच्छे अच्छे सिंहासन रखे और फिर एक सिंहासन के ऊपर कुंती माता को बैठाया गया। कुंती माता के अगल बगल में नकुल और सहदेव बैठे हुए थे। सुधर्मा, विदुर, धौम्य, धृतराष्ट्र ये सब यूं गोलाकार में यूं बैठे हुए थे। गांधारी वहां बैठी हुई थी धृतराष्ट्र के पास। युयुत्सु, संजय ये सब एक साथ बैठे हुए थे। सबके बैठने के बाद ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करवाया। मंत्री, सेनापति ये सब मांगलिक सामग्री लेकर धौम्य ऋषि के सामने रखने लगे। बड़े अच्छे अच्छे अभिषेक सामग्री के पात्र वहां पर रखे हुए थे। सब सोने के थे। सोने के घड़ों के अंदर सब नदियों का और समुद्र का जल था। और फिर वहां औदुम्बर की लकड़ी थी, गूलर की लकड़ी थी, शंख थे, सब वस्तुएं वहां पर रखी। और फिर धौम्य ने वहां पर एक छोटा सा यज्ञ किया। वो उसकी वेदी बनाई तो वेदी ईशान कोण की तरफ यूं झुकी हुई थी। घर में भी मंदिर वगैरह होना तो ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण माने अगुण और उत्तराद्री कुंटाऊ जगह है, वो ईशान कोण है। कुंटाऊ जगह कोने में तो इस प्रकार से वो गोबर से लिपी हुई वो वेदी बनाई हुई थी। फिर उस समय भगवान को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि आज हमारा युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उठ करके अपने हाथ में पांचजन्य शंख लिया और शंख लेकर के भगवान ने युधिष्ठिर के सिर के ऊपर यूं रखा और धौम्य ऋषि ने वो पवित्र जल था वो जल युधिष्ठिर के सिर के ऊपर आने दिया उसके स्पर्श से। तो भगवान यूं शंख लिए हुए और वो जल डालते हैं धौम्य ऋषि, उससे उनका अभिषेक हुआ। फिर भगवान की आज्ञा से उसी शंख से उनके चारों भाइयों का भी जो है अभिषेक किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर का अभिषेक हो जाने के बाद फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को यथोचित दान सत्कार दिया और ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया कि देखो युधिष्ठिर, आप अपने धर्म में रहते हुए प्रजा का पालन कीजिएगा, आप अपने शत्रुओं को जीतिएगा। आप बहुत विशाल युद्ध के अंदर बच गए हो, ये कोई आप पर भगवान की विशेष कृपा रही है। बार बार सत्कार किया। वहां के जो मंत्री वगैरह थे तो उन सब की नियुक्ति के लिए महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि देखो, हम सब पांडु पुत्र आप लोगों की, ब्राह्मणों की कृपा से और कृष्ण की कृपा से स्वस्थ रूप से आज आपके बीच में हैं। आप जो हमारे गुणों की प्रशंसा करते हो, ये हमारे गुणों की प्रशंसा नहीं बल्कि ऐसा गुणवान हमको बनना चाहिए, इसकी शिक्षा है। कितनी बढ़िया बात है सज्जनों, ये कोई हमारे गुणों की प्रशंसा करे तो अब क्या करना चाहिए कि हमको अंदर से सीखना चाहिए कि ऐसा बनना है हमको, हम ऐसे बने इस भावना से सुनना चाहिए। तो यान गुणान आहु, जिन जिन गुणों को कहा है सब ये गुण हमारे जीवन में आने चाहिए, इस भावना से हम ये सुन रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि धृतराष्ट्र हमारे सबके स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, पिता से पिता के बड़े भाई हैं और हमारे लिए देवताओं से भी बढ़कर है। दूसरे शब्दों में कहूं कि मैं धृतराष्ट्र के लिए ही जीवित हूं। आप सब लोग धृतराष्ट्र के अनुकूल चले, यही आपसे मैं प्रार्थना करता हूं। इसके बाद युवराज पद के लिए महाराज युधिष्ठिर जी ने भीमसेन का नाम रखा कि मेरा युवराज होगा। मेरे यहां मंत्री का काम माने गुप्त से गुप्त बात की सलाह करने का काम और निश्चय करने का काम और षाड़गुण्य से चिंतने साम दाम दंड भेद संधि विग्रह यान आसन ये राजा के छह नीतियां होती है, इनके ऊपर विचार करने के लिए मैं विदुर जी को नियुक्त करता हूं। आय व्यय के लिए मैं संजय को नियुक्त करता हूं। सेना की देखभाल करना और सेना को समय पर वेतन मिलता है कि नहीं, भोजन मिलता है कि नहीं, इसका सब काम देखने का मैं नकुल को आदेश देता हूं। इसी प्रकार शत्रुओं पर कब चढ़ाई करनी है और कौन शत्रु किस समय कहां क्या कर रहे हैं, इन सब की जानकारी का काम मैं अर्जुन को देता हूं। यहां बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, ये ब्राह्मण लोग हमारे कौन से देव कार्य में लगते हैं, किस समय में कौन सा जप अनुष्ठान यज्ञ आदि होने चाहिए, ये धौम्य ऋषि को मैं देता हूं। सहदेव हरदम मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि सारा काम मैं अकेला देख नहीं सकता हूं, इसलिए सभी अवस्थाओं में सहदेव मेरे साथ रहेंगे। मैं अपना काम इनको सौंपता हूं ताकि मेरा काम कम रहे और सब कामों को अच्छी तरह से देखा जाए। सबको यथा योग्य रूप से नियुक्त कर दिया और कह दिया कि अब आप लोग अपने अपने काम में लग जाइए और अपने अपने घरों में जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं कि उसके बाद युधिष्ठिर महाराज अपने पिता धृतराष्ट्र को साथ में लेकर गंगा जी के किनारे आए और बार बार मृत व्यक्तियों का भाइयों का नाम ले ले करके उन्होंने श्राद्ध किया। युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले द्रोणाचार्य का श्राद्ध किया और फिर महात्मा कर्ण का श्राद्ध किया। हे जन्मेजय, ये श्राद्ध की वेला इतनी विरह पैदा करने वाली थी। युधिष्ठिर महाराज बड़े कांप रहे थे, द्रोणाचार्य का नाम लेते युधिष्ठिर महाराज सिसक पड़े, कर्ण का नाम लेते ही उनके हाथ में जल की बजाय नेत्रों का जल भर गया है, आंसू आंसू आए। मेरा भाई कर्ण बड़ा भाई था, अब एक एक का धृष्टद्युम्न अभिमन्यु और घटोत्कच इत्यादियों का नाम ले लेकर के जब ये श्राद्ध कर रहे थे, उस समय ब्राह्मणों के मंत्र भी बोलते बोलते वे भी चुप हो जाते थे। सबको यथोचित दक्षिणा दी और धृतराष्ट्र गांधारी और विदुर जी वहां थे, इनसे भी श्राद्ध करवाया, दुर्योधन वगैरह का सबका श्राद्ध करवाया। जो वहां स्त्रियां आई हुई थी उनके जो पति मारे गए थे उनका और जिनके पुत्र मारे गए थे, पति और पुत्र कोई परिवार में नहीं, उन सब की ओर से वहां पर श्राद्ध किया। युधिष्ठिर महाराज ने एक एक का जब तक श्राद्ध पूरा नहीं हुआ तब तक वहां बैठे रहे और पूरा वो श्राद्ध का काम करने के बाद फिर वे अपने महल में आए। महल में आने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लिया और अपने छाती से लगा करके कहा, कृष्ण मेरी छाती के अंदर बड़ी गर्मी आ रही, बहुत जल रही है, देखो मैं कितना दुखी हो रहा हूं, शोक की लहरें उठ रही हैं। हमारे भाई कर्ण चले गए, गुरुदेव चले गए, कितने बड़े बड़े योद्धा चले गए, ये महल कैसा दिखता था आज कैसा दिख रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण के पास बैठ करके इतने रोए और भगवान की खूब स्तुतियां गाई। आप विश्वकर्मा हो, आप विश्वात्मा हो, आप विश्व संभव हो, आप ही अग्नि हो, आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही पृथ्वी हो, आप ही जगत के आदि कारण हो, आप ही जगत के प्रलय रूप में आप ही रहते हो, ऐसे ऐसे खूब स्तुतियां गाते गए और भगवान के प्रेम में और मृतकों के प्रति वे चिंतन में डूबते चले गए युधिष्ठिर महाराज। देखो ये प्रसंग इसलिए आया कि मृतक व्यक्ति याद आए, मरे हुए आदमी याद आए तो उस समय भगवान का विशेष रूप से नाम लेना चाहिए। 100 नाम लिए युधिष्ठिर जी महाराज ने। एतन नाम शतम विष्णोर धर्मराजे न कीर्तितम। ये 100 नाम लिए गए, इनको जो आदमी पढ़ता है उसके हृदय से शोक दूर हो जाता है। अपने को इन नाम को क्या मतलब है, अपने तो भगवान का जो नाम या है वो नाम लेना चाहिए, इनके अलावा कोई शोक दूर होने वाला नहीं। इस प्रकार से भगवान ने युधिष्ठिर जी महाराज को भी सांत्वना दी और अब सब रहे तो कहां रहे, तो एक बहुत सुंदर महल था जो युधिष्ठिर महाराज, जो धृतराष्ट्र महाराज का, जो वहां का राजा का महल था। सब लोगों के कहने पर उस राजा के महल के अंदर महाराज युधिष्ठिर जी ने निवास किया, सब प्रकार से सुरक्षित। फिर युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों से कहा, देखो मैं जानता हूं मेरे लिए आपने बहुत कष्ट पाया है, यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो ये युद्ध नहीं होता और आप धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारकर यहीं युद्ध विराम कर सकते थे। द्रौपदी के लिए और वनवास के लिए इनके लिए प्रसंग ही नहीं आने देते, आप इतने शूरवीर हो ये मैं जानता हूं, परंतु एक धर्म के कारण से आपने मेरी बात मानने के लिए धर्म की रक्षा की, तो बहुत आप थक गए हो, इसलिए आप सबको मैं अच्छे अच्छे आरामदायक महल में रखूंगा। ये जो दुर्योधन का महल है सबसे अच्छा महल है, सबसे अच्छा, इसके अंदर मेरा छोटा भाई भीमसेन रहेगा। और दुर्योधन का जैसा घर है वैसा ही दुशासन का है, इसके अंदर मेरा छोटा भाई अर्जुन रहेगा। दुशासन का जो महल है उसके पास में दुर्मर्शन का महल है, उसके अंदर नकुल रहेगा। और दुर्मर्शन के पास दुर्मुख नाम का जो भाई था उसके महल में सहदेव रहेगा। और युयुत्सु, विदुर, संजय ये अपने 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 स्थानों पर रहेंगे। विदुर जी का तो अपना खुद का स्थान था ही, सब अपने अपने स्थानों पर चले गए, भगवान के लिए कुछ नहीं बोले। क्यों? भगवान ने कहा भाई जहां अर्जुन है मैं तो वहीं रहूंगा। सहसात्य किना शौरीर अर्जुनस्य निवेशनम। जिस प्रकार से सिंह अपनी मस्तानी चाल से चलता हुआ अपने आप ही गुफा में प्रवेश करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है वो जो अर्जुन के साथ अर्जुन के महल में चले गए। इधर ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया युधिष्ठिर महाराज ने। एक स्नातक ब्राह्मण होते हैं, माने जो नए नए सीखते हैं ब्राह्मण, उनको युधिष्ठिर महाराज ने प्रोत्साहित करने के लिए एक एक को 1,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी। और फिर जितने वहां पर सेवक थे उन सेवकों को उन्होंने दिया, धौम्य ऋषि को दिया, कृपाचार्य को दिया, सबको जितनी सामग्री थी सबको सामग्री दी। सबके बाद फिर वे भगवान कृष्ण के पास आए। क्या भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप था! भगवान श्री कृष्ण के पास में आए तो कहने लगे, क्यों कृष्ण आप आराम से रह रहे हो ना? हे कृष्ण, आपकी ज्ञानेंद्रियां सब प्रसन्न है ना? आप मन बुद्धि से अतीत हैं, आपको यहां कोई कष्ट वैसे ही नहीं होता, लेकिन हमारी व्यवस्था में कोई त्रुटि तो नहीं लग रही है। देखो वो तो बोलते जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने यूं बैठे हुए स्थान पर चुपचाप बैठे हुए। हे जन्मेजय, उस समय भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कांति फूट रही थी शरीर से, युधिष्ठिर महाराज तो देख करके दंग रह गए। क्या उनके स्वर्ण मणिमय उनके मुकुट जगमगा रहे थे, कौस्तु मणि का प्रकाश तो सहन नहीं हो रहा था, और स्वयं भगवान की प्रदीप्ति युधिष्ठिर महाराज के आंखों के अंदर चमक डाल रही थी। भगवान कुछ नहीं बोले, नोवाच भगवान ध्यायन, भगवान कुछ नहीं बोले, वो ध्यान में डूबे हुए थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, महाराज सारा जगत आपका ध्यान करता है, सबके आप ध्येय हैं, आपका भी कोई ध्येय होता है? जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इससे परे जो तुरीय अवस्था है वो तो आपका स्वरूप सहज स्वरूप है, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान लगाकर उस स्थिति में नए ढंग से प्राप्त होने के लिए क्या कर रहे हैं? विस्मितम में मन है, मेरा मन बड़ा विस्मित हो रहा है, संपूर्ण संसार की वायु तो आपके वश में है, फिर आप यूं श्वास को रोककर क्या करने जा रहे हो? वाक् सत्वं च गोविंद बुद्धौ संविशितानि ते, इस समय ध्यान में आपने वाणी को मन में लगा रखा है और मन को आपने अहंकार में लीन कर दिया है और अहंकार को आपने अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप के अंदर लीन कर रखा है। देखो कैसी पवन चलती है लेकिन आपकी रोमावली हिलती नहीं है, स्थिर हो गई। काष्ठ कुड्य शिलाभूत है, आप भी काष्ठ के समान ऐसे हो गए। यथा दीपो निवातस्थ है, जैसे दीपक वायु रहित होता है ऐसे आप निश्चल बैठे हुए हो, क्या कारण है, क्या रहस्य है? मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज, मैं जानता नहीं हूं कुछ भी। ध्यानस्यास्य तत्त्वम्, इस ध्यान का क्या तत्व है वो मुझे समझाओ। इतना कहकर के युधिष्ठिर महाराज चुप हो गए और भगवान ध्यान में डूब गए एकदम। कई देर के बाद फिर भगवान ने नेत्र खोले, नेत्र खोल करके सामने युधिष्ठिर महाराज से कहा, युधिष्ठिर क्या प्रश्न है आपका, कि आप कहां चले गए थे? मैं अपने ध्येय के पास चला गया, जो मेरा ध्यान करता है उसके पास चला गया। कौन ध्यान करता है? भगवान ने कहा, जिसके तिल तिल की जगह भी खाली नहीं है, ऐसा जिसका शरीर बाणों से एकदम बिंद गया है, उसके शरीर में कितना कष्ट हो रहा होगा, वो कष्ट में पड़ा हुआ प्राणी बड़े प्रेम से मेरा नाम ले रहा है, मुझे याद कर रहा है। उसका नाम आप जानते हो, पितामह भीष्म है। माम ध्यायति, वो मेरा ध्यान करता है, उसने अपना मन मुझ में डाल रखा है। युधिष्ठिर, जो अपने धनुष की टंकार से देवराज इंद्र को हिला देता था, इतना जिसमें बल और पराक्रम, जिसने संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजाओं के बीच में अकेला जाकर अंबा अंबिका अंबालिका को उठा के लेके आया और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके सामने युद्ध करने की, वो परम वीर पितामह भीष्म मुझे याद करता है, मुझसे प्रेम करता है। 23 रात्रि तक जो परशुराम जी महाराज से युद्ध करता रहा, और परशुराम जी जैसे साक्षात भगवान के अवतार जिसको परास्त नहीं कर सके, वो पितामह भीष्म मुझे याद करता है, कितनी पीड़ा के समय में याद करता है। और उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा कि कृष्ण मैं तो सदा तुम्हारे से प्रेम रखने वाला था, ये क्या मेरी अवस्था बना रखी है, एक शब्द नहीं कहा उसने। जो ही इतनी बाणों का शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो वो बड़े प्रेम से बोलता है, मेरे कृष्ण, हे मेरे कृष्ण। युधिष्ठिर इस अवस्था में लिया हुआ नाम मेरे अंतस्थ में जाकर बैठता है। कितना बड़ा इसका वंश, गंगा का ये बेटा, दिव्यास्त्रों को अपनी अपने तपोबल से इसने प्राप्त किया। परशुराम जी का जो शिष्य रहा, जो भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानने वाला, हे युधिष्ठिर तुम मेरे पास जिस कारण से आयो मैं जान गया हूं, तुम्हारे अंदर का अभी शोक दूर नहीं हुआ है, यदि तुमको अपना शोक दूर करना हो उस पितामह के चरणों में जाकर अपना शीश नवाओ, वो तुमको धर्म अर्थ काम मोक्ष का रहस्य समझाएंगे, वो तुमको राज धर्म बताएंगे और वो आश्रम धर्म बताएंगे, वो आपको सब प्रकार के शिक्षा बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे थे उस समय, युधिष्ठिर महाराज तड़ 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 रोने लगे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, महाराज पितामह भीष्म का प्रभाव आपके मुख से सुनने पर मेरे हृदय में इतना उत्साह पैदा कर दिया, हम पितामह भीष्म को केवल अपना पितामह ही मानते थे, उनके अंदर इस समय इतनी बड़ी भक्ति है, मेरे अंदर शोक पैदा हो रहा है, उनके अंदर भक्ति पैदा हो रही है, तो शोक को दूर करने के लिए तो भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। आपने कहा कि पितामह भीष्म के पास जाओ, तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा महाराज, आपको साथ में लेकर जाऊंगा। भगवान ने कहा दारुक रथ तैयार करो, दारुक ने रथ तैयार कर लिया, और इधर भगवान पांडवों को लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उधर पितामह भीष्म के पास संसार भर के सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण सब इकट्ठे हो गए। माघसुदी अष्टमी का दिन था, प्राजापत्य रोहिणी नक्षत्र था और मध्याह्न का समय था। उस समय में सूर्य भगवान उत्तरायण में आए थे और युधिष्ठिर और ये पितामह भीष्म दक्षिणायन में बाण लगे, और उत्तरायण में मकर संक्रांति समझ लो आप, मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं। तो युद्ध हुआ था, ये मिंगसर सुधी 11 को हुआ, और 10वें दिन पितामह भीष्म के बाण लगे थे, तब से सरसैया पर मिंगसर पोष और माघ सुधी लगभग 2 महीने तक उत्तरायण नहीं आया तो पड़े रहे वहां, कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, इच्छा मृत्यु थे, चाहे तो कभी मर सकते थे, नहीं मरे वो। व्यास जी महाराज भी वहीं, नारद जी भी वहीं, सौंडल्य आदि भी वहीं, परशुराम जी भी वहीं, शुक्राचार्य जी भी वहीं, बृहस्पति भी वहीं, च्यवन ऋषि भी वहीं, क्या बताएं कितने कितने ऋषि थे, सबके बीच में बैठे हुए पितामह, लेटे हुए पितामह, आप सब के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। कहने लगे पितामह आंख खोल के बोलो, कुछ सुनाई, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं कि सूर्य अब उत्तरायण में आ चुका है और आप जाने की तैयारी में है, कुछ सुनाइए हमको। तो पिता मैंने स्वरेण हृष्ट पुष्टेन, पिता मैंने एक भगवान की स्तुति करी। ये पंचरत्न गीता है, इसमें भीष्म स्तवराज आता है, उसमें केवल भगवान की स्तुति है। भगवान को अनेक प्रकार से पूजित करके इसमें बताया गया, ऐसे भगवान, वे ही भगवान क्रोड बनते हैं, वराह बनते हैं, वे ही वामन बनते हैं, वो तस्मै भूतात्मने नमः, संपूर्ण भूतों के रूप में वे ही हैं। ऐसे ऐसे भगवान के अनेकों का स्मरण करते हुए कहा कि ये जो भीष्म स्तवराज है, जिसको गाया गया है, इसका जो पाठ करता है वो सब प्रकार से मुक्त हो जाता है। इधर तो ये हो रहा है, उधर भगवान पांडवों के साथ प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते हैं तो कुरुक्षेत्र में से होकर ही जाना पड़ेगा पितामह के पास। तो कुरुक्षेत्र आया, देखा तो इतनी हड्डियां पड़ी हैं, इतनी चिताओं की राख है, इतने वहां पर मस्तक पड़े हैं, हाथियों के, घोड़ों के, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, और झुंड के झुंड भूत प्रेत पिशाच, वहां पक्षी गीद ये एक साथ टूटे पड़े हैं। वहीं पर पांच सरोवर थे। भगवान ने कहा कि जानते हो ये पांच सरोवर, ये पांच सरोवर है, यहां आकर के परशुराम जी महाराज ने स्नान किया था, पितरों का तर्पण किया, और यहीं से फिर उन्होंने युद्ध समाप्त कर दिया था। 21 बार क्षत्रियों से रहित किया कि महाराज फिर भी ये क्षत्रिय कैसे रह गए। कह दे कोई कोई किसी प्रकार से छिपे छिपे रह गए थे, और फिर ये महाभारत के अंदर और भी मारे गए। फिर इन्होंने परशुराम जी का चरित्र सुनाया। परशुराम जी महाराज कौन थे वो चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि देखो जमदग्नि परशुराम जी महाराज, इनका वंश बड़ा पवित्र है। जन्नू के बेटा हुए अज, अज के बलकाश्व और बलवाश्व के कुशिक हुए, और कुशिक के पुत्र हुए गाधी, गाधी के बेटा हुए थे विश्वामित्र, गाधी के बेटा हुए विश्वामित्र। देखो ये गाधी थे, इनकी एक कन्या थी, गाधी के कन्या थी, उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचि के साथ हुआ, तो गांव तो ऋचि के एक बड़े तपस्वी थे। उन ऋचिक ऋषि ने कहा कि देख भाई, सत्यवती से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि देखो तुम्हारे कोई भाई नहीं है और तुम्हारे कोई लड़का भी नहीं है, तो मैं कर रहा हूं तपस्या में जा रहा हूं, मैं दो खीर के चरु बना देता हूं। एक खीर का चरु है वो तुम अपने पास रख लेना, और एक तुम्हारे माता के लिए बना देता हूं, ताकि तुम्हारी माँ आए तो उसको दे देना, ताकि उसके पुत्र हो जाएगा, तुम्हारे भाई हो जाएगा। इतना कह करके चरु पका करके और वो तपस्या में चले गए। इधर उनकी माँ आई तो सत्यवती ने अपनी माँ को सरलता से वो चरु दे दिया। इधर सत्यवती की माँ ने ध्यान दिया नहीं, वो चरु अदला बदला हो गया, अदला बदलाव हो गया। तो पहले ही कह दिया था कि तेरे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, संसार में बड़ा नाम होगा, सत्यवती से कहा, और वो बड़ा विलक्षण होगा, और इसके जो पुत्र होगा वो बड़ा भयंकर होगा। तुम्हारे भाई जो होगा वो तो बड़ा भयंकर बड़ा क्रोध वाला होगा। सत्यवती ने अपनी मां को जब चरु दिया और मां इधर उधर उस चरु को कर दी और जब चरु ले लिया अब दोनों के पेट में बालक, इतने में वो तपस्या उनकी पूरी हो गई। तो कहा कि अरे सत्यवती तेरे गर्भ से तो एक बड़ा भयंकर ये चरु अदला बदली होने से जो तेरा भाई होने वाला था वो तेरा पुत्र होगा। अब उसके नाम से सब डरेंगे, क्षात्र तेजंत सकलम तव मातृ समर्पितम, क्षात्र तेज तो सब तुम्हारे मां में चला गया है और विपर्येण ते भद्रे नेते देवम भविष्यति, और देख लेना चरु के बदल लेने से अब तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारे माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारे यहां बड़ा भारी क्षत्रिय हो जाएगा। अब सत्यवती चिल्लाई के महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए, डरावना पुत्र नहीं होना चाहिए। ऋचिक ने कहा ये मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरी वाणी से कभी मिथ्या बात निकलती नहीं है, कभी मजाक में भी हम झूठ नहीं बोलते हैं, विनोद में भी झूठ नहीं बोलते। नोक्त पूर्वानृतम भद्रे स्वैरेश्वे भी कदाचन है। तब सत्यवती ने कहा कि अच्छा महाराज मेरे बेटा तो नहीं होना चाहिए, मेरा पोता हो जाए तो कोई बात नहीं। तब जमदग्नि तो बेटा हुए और जमदग्नि के ये परशुराम जी महाराज हुए, जमदग्नि के पुत्र के रूप में हुए ये ऋचि के जमदग्नि और जमदग्नि के परशुराम जी महाराज। उधर गादी के बेटा हुए विश्वामित्र जी महाराज। परशुराम जी महाराज के समय में ये सहस्रार्जुन हुआ था, सारी पृथ्वी का मालिक था। इसके ऊपर एक बार अग्नि ने बड़ी कृपा की तो अग्नि के साथ मिलकर के पृथ्वी को वो भस्म करने लगा। ऐसे करते हुए वो एक आश्रम को अंदर अग्नि चली गई। तब आश्रम के ऋषि ने श्राप दिया कि तू परशुराम जी के द्वारा तेरी भुजाएं काट दी जाएगी, तू मारा जाएगा। तब जो है परशुराम जी महाराज के द्वारा वो मारे गए, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। अब उधर क्या हुआ कि ये सहस्रार्जुन था वो जमदग्नि के यहां पर जो गाय थी उसका बछड़ा ले गया। तब जो है परशुराम जी महाराज को क्रोध आया और पृथ्वी का संहार किया है। तथा सु महातेजा कृत्वा निक्षत्रिया महिम कृपया पर्याविष्टो वनमेव जगामह। फिर सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया, फिर वन में चले गए और फिर उसके बाद ये पृथ्वी थी ना, ये पृथ्वी रसातल में जा रही थी तो कश्यप ऋषि जी थे, उन्होंने आकर अपने ये उरु कहते हैं जांग को, जांग से उन्होंने इस पृथ्वी को रोक लिया, इसलिए इस पृथ्वी का नाम उर्वी भी है। उर्वी ये जांग यो लगा दी तो पृथ्वी टिक गई। कहा कि अरे मेरे को कितनी देर तक ठहराओगे, यहां क्षत्रिय होंगे तभी ठहरेंगे। कह महाराज क्षत्रिय तो परशुराम जी ने नष्ट कर दिए। कह नहीं नहीं कुछ कुछ इधर उधर बचे हुए है, एक सौदास का बेटा है उसका नाम सर्वकर्मा है वो क्षत्रिय है, एक राजा शिवी का पुत्र है वो क्षत्रिय है, एक प्रतदन का पुत्र है, ऐसे ऐसे क्षत्रिय है, इनको लाओ और मेरी रक्षा करो। तब तो कश्यप जी ने लाकर सबकी रक्षा की और फिर ये क्षत्रियों का वंश चला। ऐसे बात करते 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 पितामह भीष्म के पास पहुंच गए और कल से पितामह भीष्म का और पांडु पुत्र युधिष्ठिर का संवाद प्रारंभ होगा।
नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
मन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्री नारायण नारायण नारायण।